بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انگراہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتہ توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتہ انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، آج بدھوار ہے، ستمبر کی 14، سفر کی 17 اور شہری ورما کی 23 تاریخ۔ کاریکرموں میں آپ پہلے سماچار سنیں گے، پھر راجنیتک چرچا ہوگی، جس کے بعد ساپتاہک کاریکرم پیش کیا جائے گا آشا کی کرن۔ ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو شوتاؤ، یہ تھی روپ ریکھا۔ آپ کچھ ہی چھڑوں میں وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے۔ اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ राष्ट्रपति रईस ने कहा है कि हम क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। बाइडेन ने युद्ध में यूक्रेन की प्रगति का दावा किया है। रूस का कहना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के बीच शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी कहती है कि इस समय भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि हम क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। सैयद इब्राहिम रईसी ने पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों में विस्तार को 13वीं सरकार की प्राथमिकता बताया। समरकंद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा पर निकलने से पहले मेहराबाद हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति रईसी ने यह कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है और साथ ही बहुपक्षवाद को अधिक विस्तार देना है। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने में हमने अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। उनका कहना था कि शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में क्षेत्रीय विकास को मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि शिखर बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकातों में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने का इच्छुक है। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी यह यात्रा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अधिक विस्तार का कारण बनेगी।
तीन यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के साथ मिलकर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान के खिलाफ एक बयान जारी करके उस पर दबाव डालें। कूटनयिक सूत्रों का कहना है कि ये चारों देश बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अन्य देशों के साथ मिलकर लामबंदी कर रहे हैं एक बयान जारी हो जिसमें ईरान से ये मांग की जाए कि वो IAEA के 3 दावों के बारे में जवाब दे। रॉयटर्स के अनुसार चारों देशों ने इस बार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रस्ताव लाने के बजाय एक संयुक्त बयान जारी करना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि हम ईरान से ये चाहते हैं कि तत्काल कदम उठाकर अपनी कानूनी प्रतिबद्धताएं पूरी करें और परमाणु विषय से जुड़े सारे मुद्दों को तत्काल हल करें।
अमरीका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध में इस देश की सैन्य प्रगति का दावा किया है। जो बाइडेन का कहना है कि रूस के साथ युद्ध के यूक्रेन की सेना को उल्लेखनीय बढ़त हासिल हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति ने बुधवार को दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक युद्ध के अग्रिम मोर्चों पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर विवश कर दिया है। जब जो बाइडेन से ये पूछा गया कि यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि ये युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने उल्लेखनीय प्रगति तो की है लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि यूक्रेन और उसके घटकों द्वारा युद्ध में प्रगति का दावा पूरी तरह से निराधार है। कुछ जानकारों का कहना है कि कम से कम फिलहाल यूक्रेन ने युद्ध का रुख मोड़ने में सफलता हासिल तो कर ली है लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। कुछ टीकाकारों का यह भी कहना है कि रूसी सैनिकों का पीछे हटना रूस की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है।
रूस का कहना है कि शांति की स्थापना के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया को कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद रूस ने कहा है कि शांति हासिल करने के लिए दोनों पक्षों को लंबा कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। रूसी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी डेनिस गुंजार ने बुधवार को कहा है कि त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने के लिए रूस यथासंभव प्रयास करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बाकू और इरवान के बीच समझौते को लागू कराने के लिए मॉस्को हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर है। याद रहे कि कराबाख के मुद्दे को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान गणराज्य के बीच सोमवार की रात संयुक्त सीमा पर झड़पें आरंभ हो गईं। इन झड़पों में दोनों ओर से 100 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसी बीच ये खबर मिली है कि बुधवार को अजरबैजान गणराज्य के सैनिकों ने अर्मेनिस्तान से मिलने वाली सीमा पर युद्धक ड्रोन का प्रयोग करते हुए कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। याद रहे कि अक्टूबर 2020 में भी अजरबैजान गणराज्य और आर्मेनिया के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। इन झड़पों ने युद्ध का रूप धारण कर लिया था। 44 दिनों तक चलने वाली ये झड़पें रूस की मध्यस्थता से रुक पाई थी जिसमें दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराया गया था।
सीरिया का कहना है कि तुर्की के साथ हम अपने संबंध कुछ शर्तों के साथ ही सुधारेंगे। सीरिया की संसद में अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रमुख पुत्रस मरजाना ने कहा है कि जब तक तुर्की हमारी भूमि के अतिग्रहण को समाप्त नहीं करता उस समय तक हमारे संबंध उसके साथ सामान्य नहीं हो पाएंगे। एक रूसी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसी के साथ तुर्की को आतंकवादी गुटों का समर्थन भी छोड़ना होगा। सीरिया के सांसद के अनुसार दमिश्क और अंकारा के बीच संबंधों के सामान्य होने की ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उनका कहना था कि देशों के संबंधों को परस्पर सम्मान के आधार पर होना चाहिए। पुत्रस के अनुसार हर देश को अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखने का पूरा अधिकार है। याद रहे कि लगभग पिछले 3 वर्षों से तुर्की की सेना ने आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष के बहाने सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर रखा है। सीरिया के वे नागरिक जो इन क्षेत्रों में रहते हैं वे तुर्की के सैनिकों के हमलों के विरोध में कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी मातृभूमि से विदेशी सैनिकों को तत्काल वापस चले जाना चाहिए।
इसराइली सेना ने एक ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक के जरीन शहर में एक चेकपोस्ट के करीब फिलिस्तीनियों से होने वाली झड़प में एक इसराइली कमांडर मारा गया है। वहीं फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि बुधवार की सुबह होने वाली झड़पों में 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं जबकि इसराइली सेना ने कहा है कि शुक्रवार तक चेकपोस्ट पूरी तरह बंद रहेगी। شہید ہونے والے دونوں فلسطینیوں کا سمجھ جنین کے پشچم استھت کفردان گاؤں سے ہے۔ یہ دونوں فلسطینی یوا اسرائیلی سینا کی چیک پوسٹ کے قریب بارودی سرنگ لگانا چاہتے تھے، مگر اس بیچ اسرائیلی سینک وہاں پہنچ گئے اور جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ جھڑپ میں دونوں فلسطینی یوا شہید ہو گئے۔ اس بیچ فتح آندولن کی سینک شاخہ الاقصا بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینکوں کی ایک گاڑی پر حملہ کیا۔ یہ گھٹنائیں تب ہو رہی ہیں جب اسرائیلی سرکار کا نیتتو یائیر لپید کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے لگاتار سرکشا ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھکیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔
ہیکروں نے اسرائیل کے پورو پردھان منتری کی نجی جانکاریاں لیک کر دیں، وہیں 95 لاکھ اسرائیلیوں کا ڈیٹا بھی چوری کر لیا گیا۔ اسرائیل کی ولا نیوز نے اس سندرب میں رپورٹ دی ہے کہ ہیکروں نے اسرائیلیوں کے آئیڈینٹیٹی کارڈ کے نمبر، ان کے پتے اور جاری ہونے کی تاریخ چوری کر لی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو ڈیٹا چوری کیا گیا ہے اس میں اسرائیل کے ورشٹھ ادھیکاریوں سے جڑی بے حد خاص جانکاریاں بھی شامل ہیں۔ ورتمان اور پورو پردھان منتریوں سے جڑا ڈیٹا بھی ہیکروں کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ڈارک وار کے کوٹ کے ساتھ کام کرنے والے ہیکروں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے پاس اسرائیلیوں کا ڈیٹا آ گیا ہے 8,300 لوگوں کا ڈیٹا سارجنک کر دیا ہے، جس میں پورو پردھان منتری بنیامین نیتنیاہو کا ڈیٹا بھی شامل ہے۔
کانگریس ادھیکش کا کہنا ہے کہ متدادوں کا دھروکرن کرنے کے لیے دیش کے بھیتر ساماجک سدبھاونا کے بندھنوں کو توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سطح پچھلے 8 ورشوں کے دوران کچھ راجنیتاؤں اور بڑے ویاپاریوں کے ہاتھوں میں کیندرت ہو کر رہ گئی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ اس سمے بھارت میں لوکتنتر کو کمزور کیا جا رہا ہے اور اسی ساتھ دیش کی سنستھاؤں کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے انوسار ہندوستان ٹائمز میں پرکاشت ایک لیکھ میں کانگریس کے ادھیکش نے لکھا ہے کہ وگت میں سوتنتر رہی دیش کی سنستھائیں اب کاریہ پالیکا کا اوزار بن گئی ہیں، وہ پکشتا پورن ڈھنگ سے کام کر رہی ہیں۔ دیش کی سرکاری ایجنسیاں سرکار کا ورودھ کرنے والے ہر انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ سونیا گاندھی لکھتے ہیں کہ سمویدھانک ملیوں اور سدھانتوں پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چناؤ لابھ کے لیے دیش کے متداتاؤں کا دھروکرن کیا جا رہا ہے، اس کام کے لیے دیش کی ساماجک سدبھاونا کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کی ادھیکش سونیا گاندھی کا یہ لیکھ کانگریس کے اس مہتواکانکشی یاترا بھارت جوڑو کے بیچ سامنے آیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا سے اس کا ادیش بھارت میں پھیل رہے وبھاجن کا مقابلہ کرنا اور پارٹی کے سنگٹھن کو پنرجیوت کرنا ہے۔
بھارت کو وبھاجن سے بچانے اور پنہ ایک جٹ کرنے کے نعرے کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا لگاتار آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے راشٹریہ ویورش میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ 3,570 کلومیٹر لمبا یہ مارگ کنیا کماری سے راہل گاندھی کے نیتتو میں شروع ہوا، جس میں کانگریس پارٹی نے پورے دیش کو مضبوط سندیش دینے کی کوشش کی ہے۔ اس یاترا میں پردھان منتری کی بھارتی جنتا پارٹی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ششی تھرور نے کہا ہے کہ ہم سمویدھان کی آتما کی رکشا کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे 7 साल बाद तेहरान लौटे संयुक्त अरब इमारात के राजदूत की ईरान वापसी के बारे में।
संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत,
और फिर बात करेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी टकराव के बारे में,
अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ओफ,
और अंत में चलेंगे भारत जहां गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही बीजेपी के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 7 साल के लंबे अंतराल के बाद संयुक्त अरब इमारात के राजदूत ने तेहरान पहुंचकर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लायान से मुलाकात की है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत 7 साल बाद तेहरान वापस लौट आए हैं और तेहरान पहुंचकर उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से मुलाकात करके दोनों देशों के संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। अमीरात ईरान का एक पड़ोसी देश है, लेकिन उसके ईरान से संबंध कुछ द्वीपों को लेकर निराधार दावों और विदेशी शक्तियों से प्रभावित होकर अस्थिर रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ईरान के 3 द्वीपों पर अपना दावा ठोकता है और अक्सर और खास तौर पर अरब देशों की बैठकों में इन दावों को दोहराया जाता है, लेकिन ईरान ने हमेशा ही उसके इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध विदेशी शक्तियों के प्रभाव में बदलते रहते हैं। हालांकि यूएई का यह भी दावा है कि वो अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र है, लेकिन देखा यह गया है कि उसकी विदेश नीति सऊदी अरब और अमरीका जैसे देशों के दबाव में बदलती रहती है। यमन के खिलाफ जंग और ईरान और कतर से संबंधों को तोड़ना इसका खुला उदाहरण है। 2016 में सऊदी अरब के समर्थन में ईरान पर दबाव बनाने के लिए यूएई ने तेहरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे और अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में यही व्यवहार जारी रखा था। अबू धाबी सरकार ने तेहरान के साथ ऐसा रवैया अपनाया, लेकिन तेहरान ने हमेशा एक पड़ोसी देश के रूप में यूएई से अच्छे संबंधों पर बल दिया। कहा जा सकता है कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि कभी दोनों देशों के संबंध किसी ऐसे मुद्दे को लेकर खराब हुए हों जिसका संबंध सिर्फ दोनों देशों से रहा हो। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। अब 7 साल बाद अबू धाबी ने तेहरान के लिए अपना राजदूत तो भेज दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसकी विदेश नीति पर सऊदी अरब और अमरीका का प्रभाव खत्म हो गया है, बल्कि इसमें एक तीसरा फैक्टर और जुड़ गया है और वो है इसराइल। यूएई ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य बनाने का समझौता कर लिया है, जिसके बाद इस देश में ज़ायोनी शासन की गतिविधियां भी किसी हद तक अबू धाबी की विदेश नीति को प्रभावित कर रही हैं। यहां ये बिंदु उल्लेखनीय है कि ईरान के साथ अच्छे संबंध खुद यूएई के लिए ज्यादा लाभदायक हैं। हालिया वर्षों में कतर और अन्य अरब देशों के बीच जो कूटनीतिक संकट उपजा था, उसमें ईरान ने दोहा का भरपूर समर्थन किया, जिसने ये साबित कर दिया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर सम्मानजनक संबंध चाहता है और जरूरत पड़ने पर उनका भरपूर सहयोग भी करता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब चर्चा करते हैं लंबे समय से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी युद्ध के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीओफ ने सेना के कमांडरों को कुछ खास निर्देश दिए हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अली ओफ ने देश के सेना कमांडरों के साथ एक अहम बैठक की है। ये बैठक सीमा पर अजरबैजानी और आर्मीनियाई सेनाओं के बीच भीषण झड़पों के बाद हो रही है। झड़पों में दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। इलहाम अली ओफ ने इस बैठक में कहा कि सीमा पर आर्मीनियाई सैनिकों की गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया है। बैठक में इलहाम अली ओफ ने सेना के कमांडरों को कुछ निर्देश दिए और सबकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर इसलिए कि जिस झड़प के बाद ये बैठक हुई है उसमें दोनों तरफ से 99 सैनिक मारे गए, जबकि झड़प 24 घंटे के भीतर रुक गई। 24 घंटे के भीतर इतनी जानें चली जाना गंभीर मसला है। अजरबैजान के 50 और आर्मेनिया के 49 सैनिक इस झड़प में मार दिए गए। हालांकि अजरबैजान ने हालिया समय में अपनी सेना पर बहुत बड़ा बजट खर्च किया है, यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने को लेकर अजरबैजान के भीतर सवाल उठ रहे हैं। कुछ टीकाकार इलहाम अलीओव की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। एक विपक्षी नेता ने फेसबुक पेज पर लिखा कि एक दिन में 50 साहसी सैनिक हमने गंवा दिए, वो भी तब कि जब बाकायदा जंग नहीं हो रही है बल्कि शांति वार्ता चल रही है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बयानों में बताया गया है कि सीमा पर कई बिंदुओं पर झड़पें होने लगी। दोनों ही देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। झड़पों के बाद 13 सितंबर को आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद ने औपचारिक रूप से रूस से मांग की है कि वो पारंपरिक दोस्ती के समझौते का पालन करते हुए कदम उठाए, यानी आर्मेनिया इस जंग में रूस से मदद मांग रहा है। अब तक कई देशों ने इन झड़पों पर प्रतिक्रिया दिखाई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। रूसी क्रेमलिन हाउस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तनाव कम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों के बीच झड़पों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि तत्काल कोशिश की जानी चाहिए कि तनाव खत्म हो जाए। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेप बोरेल ने दोनों देशों से कहा कि तनाव से पहले वाली पोजीशनों पर लौट जाएं और संघर्ष विराम का सम्मान करें। वहीं तुर्की ने कहा है कि वह हमेशा अजरबैजान का साथ देगा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुर्की के इस स्टैंड को बहुत से टीकाकार हैरत की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये तनाव बढ़ाने का इशारा है। अगर तनाव बढ़ता है और टकराव जारी रहता है तो दोनों तरफ से इंसानी जानों का नुकसान यकीनी है और ये किसी के भी हित में नहीं होगा।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत में जहां विपक्षी दल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तोड़ो अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शम।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जहाँ कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वहीं आज गोवा में इस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस के इन 8 विधायकों में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो भी शामिल हैं, जिन पर इसी वर्ष जुलाई में पार्टी को तोड़ने के प्रयास का आरोप लगा था और जिन्हें अयोग्य ठहराए जाने की याचिका अभी विचाराधीन है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए माइकल लोबो ने पुष्टि की कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द कांग्रेस के बड़े नेता भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे।
All the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come. You will see within the next 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, all the top leaders who had strengthened the Congress party are going to leave that party.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि कांग्रेस के 8 विधायकों ने नए भारत के निर्माण और गोवा के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को ध्यान में रखते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना गोवा के विकास में ऐतिहासिक सिद्ध होगी। दिगंबर कामत ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है और उसका वास्तविक नारा भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो है। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा,
भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है
उसका नतीजा गोवा में दिखाया, ऑपरेशन कीचड़ करके। पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत इन लोग का।
ज्ञात रहे कि वर्ष 2019 में भी कांग्रेस के 10 और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने इसी प्रकार भाजपा का दामन थाम लिया था। इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद अब गोवा विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या केवल 3 रह गई है, जबकि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की कुल संख्या 33 हो गई है, जिनमें 20 भाजपा के चुने हुए विधायक हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के बाद अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
साथियों, आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम में हम महा मुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शिया मुसलमानों का मानना है कि जब पूरी दुनिया में अत्याचार का बोलबाला होगा, यानी पूरी दुनिया अत्याचार से भरी होगी, पूरी दुनिया बुराइयों से भरी होगी, तो महा मुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे और पूरी दुनिया को शांति व न्याय से भर देंगे। जबकि ईसाइयों का मानना है कि महा मुक्तिदाता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि महामुक्तिदाता के प्रकट होने पर सब एकमत हैं, परंतु महामुक्तिदाता के बारे में मतभेद हैं। ईसाइयों का मानना है कि हजरत ईसा समस्त मानवता को मुक्ति प्रदान करेंगे। वह दुनिया को शांति, दोस्ती, न्याय और आध्यात्मिकता से भर देंगे। जबकि ज़ायोनियों जैसी धारणा रखने वाले ईसाइयों का मानना है कि वह एक क्रूर सैनिक हैं और उनके प्रकट होने से बहुत से लोग, विशेषकर मुसलमान, मारे जाएंगे।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि महामुक्तिदाता के जहूर पर आस्था ईसाइयों की एक महत्वपूर्ण आस्था है, और पिछले कार्यक्रम में हमने ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इंजील में काफ़ी हेरा फेरी कर दी गई और बाद में दसियों इंजील लिखी गई, जिसकी वजह से महामुक्तिदाता के बारे में काफ़ी मतभेद है। जिन चीज़ों के बारे में मतभेद है उनमें से एक स्वयं महामुक्तिदाता का व्यक्तित्व है। कुछ इंजीलों में महामुक्तिदाता को इंसान का बेटा और सच्ची आत्मा के नाम से याद किया गया है। रोचक बात यह है कि स्वयं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारम्बार महामुक्तिदाता की चर्चा की और उसके आने की शुभ सूचना दी है।
यूहन्ना नाम की इंजिल में महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना इस प्रकार दी है, मैं पिता से अनुरोध करता हूं और वह आपको सांत्वना देने वाला दूसरा प्रदान करेगा, और वह हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी तरह इस इंजिल में आया है कि जब सांत्वना और तसल्ली देने वाला पिता के पास से यानी सच्ची आत्मा के पास से आएगा तो वह मेरी यानी ईसा की गवाही देगा। और आप भी महत्वपूर्ण रचना जेम्स हावक्स में गवाही देंगे।
जेम्स हावक्स पवित्र किताब का शब्दकोश है। इंसान के बेटे शब्द के बारे में इस किताब में आया है कि ये शब्द 80 बार इंजील में प्रयोग किया गया है, जिसमें से केवल 30 बार की पुष्टि की जा सकती है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। दूसरे शब्दों में जो अन्य 50 बार इंसान के बेटे शब्द का प्रयोग किया गया है यानी महामुक्तिदाता की बात की गई है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी अन्य महामुक्तिदाता के बारे में बात की गई है। इस बिंदु को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ईसाइयों की दृष्टि में वो महामुक्तिदाता ईश्वर का बेटा है, न कि इंसान का।
इस बारे में भी संदेह है कि महामुक्तिदाता की सरकार जमीन पर होगी या आसमान पर, और इसी प्रकार दूसरे धर्मों के मानने वालों के साथ महामुक्तिदाता का व्यवहार कैसा होगा, इस बारे में भी मतभेद हैं। किंतु महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ईसाई धर्म में जिस महामुक्तिदाता की बात की गई है वह उस मुक्तिदाता जैसा है जिसके बारे में इस्लाम में चर्चा की गई है। जिस तरह से कहा गया है कि समस्त आसमानी धर्म महान ईश्वर की ओर से हैं और सबकी मूल शिक्षाएं समान हैं, इस आधार पर अकारण नहीं है कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जिस महामुक्तिदाता के बारे में चर्चा की गई है वह बहुत सीमा तक समान है। दोनों महामुक्तिदाता हैं और दोनों महान ईश्वर की ओर से प्रकट होंगे। दोनों के जुहूर और प्रकट होने का समय स्पष्ट नहीं है। दोनों धर्मों में यह बताया गया है कि महामुक्तिदाता की सरकार विश्वव्यापी होगी, पूरी दुनिया में न्याय शांति और समानता स्थापित होगी, हर प्रकार के भेदभाव और अत्याचार का अंत हो जाएगा, चारों ओर शांति ही शांति होगी, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, मानवता परिपूर्णता के शिखर को तय करेगी, इंसानों के अंदर निहित योग्यताएं व क्षमताएं निखर कर सामने आएगी।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु का उल्लेख आवश्यक है और वो ये है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मध्य एक ऐसा संप्रदाय अस्तित्व में आ गया जो महामुक्तिदाता की इस प्रकार की विशेषता को नहीं मानता है, और उसका मानना है कि महामुक्तिदाता के जहूर से पहले जो घटनाएं घटेंगी वो बहुत डरावनी और अमानवीय होंगी। इस गुट व पंथ को इस समय ईसाई ज़ायोनियों के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, इस गुट व पंथ के नाम से ही यह बात स्पष्ट है कि इसकी सोच ज़ायोनियों की सोच है और वह ज़ायोनियों के मध्य अतिवादी और युद्धोन्मादी पथ है। इस नए पंथ के नेता अंतिम समय में प्रकट होने वाले महामुक्तिदाता को बहुत ही हिंसा प्रेमी राजनीतिज्ञ बताते हैं। वे महामुक्तिदाता का परिचय पूरी तरह ज़ायोनियों की आस्था व धारणा के अनुसार करते हैं। ज़ायोनी और यहूदी स्वयं को ईसाइयों और गैर ईसाइयों से श्रेष्ठ व बेहतर समझते हैं। उनका मानना है कि यहूदी जाति का चयन ईश्वर ने किया है और उसने यहूदियों को दूसरे इंसानों पर श्रेष्ठता दी है, जबकि उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। महान ईश्वर सबका रचियता और सबका ही पालनहार है। उसने किसी भी इंसान को किसी दूसरे पर श्रेष्ठता नहीं दी है। अगर वह ऐसा करता तो यह भेदभाव व अन्याय होता और महान ईश्वर हर प्रकार के अन्याय से दूर है। हाँ, महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में फरमाया है कि उसके समीप वह अधिक प्रतिष्ठित है जिसका तकवा अधिक हो, यानी महान ईश्वर से अधिक डरता हो। सद्गुणों से सुसज्जित हो और बुराइयों से दूर हो। और यह कार्य महान ईश्वर नहीं करता, बल्कि स्वयं इंसान करता है। और यह कार्य जुल्म व अत्याचार नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक कार्य है।
यहूदी और अतिवादी ज़ायोनी स्वयं को दूसरे समस्त इंसानों से बेहतर समझते हैं। उनका मानना है कि हम ईश्वर के निकट हैं और ईश्वर ने दूसरे इंसानों को हमारी सेवा के लिए पैदा किया है। वो स्वयं को हर चीज़ का मालिक समझते हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और ताकत के बल पर फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर कब्जा कर लिया है और लाखों फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया है और वे दूसरे देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज भी ज़ायोनी फिलिस्तीन के मजलूम लोगों पर अत्याचार करने से में संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। उनकी मुख्य वजह यह है कि मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वालों का उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त है और मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले कभी भी नहीं कहते कि अपराधी ज़ायोनियों को सजा दी जाएगी। सजा देना तो बहुत दूर की बात, अगर इसराइल विरोधी प्रस्ताव भी राष्ट्रसंघ या सुरक्षा परिषद में पेश किया जाता है तो पहले उसे अमरीका ही नहीं पेश होने देता, और अगर पेश हो भी गया तो अमरीका उसे वीटो कर देता है। इसराइल के समर्थन में वीटो करना उसका समर्थन नहीं तो क्या है? इसराइल के समर्थन में इस प्रकार का कदम उसके अधिक दुस्साहसी होने का कारण बना है।
यही नहीं, अतिवादी ज़ायोनी व यहूदी फिलिस्तीन में मस्जिदुल अक्सा को गिराकर उसके स्थान पर सुलेमान उपासना स्थल का निर्माण करना चाहते हैं। ये वह चीज है जिसे अंजाम देने के लिए यहूदी व ज़ायोनी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। अतिवादी ज़ायोनियों और यहूदियों जैसी धारणा रखने वाले ईसाई संप्रदाय का मानना है कि सुलेमान उपासना स्थल हजरत ईसा की सरकार का केंद्र व मुख्यालय होगा और इसी कारण वह मुसलमानों के पहले किबले मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने हेतु ज़ायोनी सरकार के कुप्रयासों का समर्थन करते हैं। ईसाइयों का अतिवादी संप्रदाय इस बात को जानता है कि मस्जिदुल अक्सा इस्लामी जगत के मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर मस्जिदुल अक्सा को शहीद किया गया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है।
दोस्तों, रोचक बात यह है कि अतिवादी संप्रदाय जंग का स्वागत करता है और वो इस जंग को हजरत ईसा के आगमन की भूमिका मानता है। उसका मानना है कि यह लड़ाई बैतुल मुकद्दस के निकट होगी और इस लड़ाई के आरंभ होते ही हजरत ईसा आसमान से जमीन पर आएंगे और केवल उसी संप्रदाय को स्वर्ग में ले जाएंगे। इसी तरह अतिवादी ज़ायोनियों व यहूदियों जैसी आस्था रखने वाले पदभ्रष्ट ईसाई संप्रदाय का मानना है कि हजरत ईसा उसके सहयोग से दज्जाल और उसकी सेना का अंत कर देंगे और उसके बाद उनकी हजार वर्षीय विश्वव्यापी सरकार का समय आरंभ होगा।
ईसाई धर्म की आस्था के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम महामुक्तिदाता बनकर प्रकट होंगे और वह समस्त मानवता को समाज में व्याप्त अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। वह शांति व सुरक्षा, न्याय और आध्यात्मिकता का संदेश देंगे, जबकि अतिवादी ईसाई उन्हें एक युद्ध प्रेमी व्यक्ति के रूप में बताने व दर्शाने की चेष्टा में है। इस अतिवादी ईसाई संप्रदाय का मानना है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मुसलमानों सहित बहुत अधिक लोग मारे जाएंगे। ये संप्रदाय अपने अतिवादी और युद्धोन्मादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है और खेद की बात यह है कि अब तक अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और जूनियर बुश भी इस संप्रदाय के विचारों के अनुयायी हो चुके हैं और पूरी दुनिया ने देख लिया कि रीगन और जूनियर बुश ने विश्व की शांति व सुरक्षा को कितना नुकसान पहुंचाया। इराक और अफगानिस्तान में कितने हजार निर्दोष लोग मारे गए। अमेरिका सहित मानवाधिकारों का राग अलापने वालों से पूछा जाना चाहिए कि इतने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है और उसे कब सजा दी जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, बहरहाल वो दिन अधिक दूर नहीं है जब महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईश्वर के आदेश से प्रकट होंगे और पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित करेंगे और दुनिया के हर क्षेत्र में शांति व न्याय की शीतल बयार बहेगी। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने कार्यक्रम सुना आशा की किरण, जिसे पेश किया अख्तर अब्बास और स्वाति ने। अब सभा के अंत में पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम आज कल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम इस्लामोफोबिया के अंतर्गत हिजाब के बारे में चर्चा करेंगे।
हालिया दिनों में पश्चिम में इस्लामोफोबिया का जोर है। अब इस्लामी हिजाब के मुद्दे को पेश करके उसके विरुद्ध कार्रवाइयां आरंभ हो गई हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के मॉलन शहर में एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल के जिम्मेदारों का कहना था कि छात्रा का हिजाब स्कूल की ड्रेस से मेल नहीं खाता। इस मुस्लिम छात्रा के साथ पेश आने वाली घटना पर सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर छात्रा से सहानुभूति जताई गई।
मॉल्डन शहर में जब स्कूल खुल रहे थे तो एक मुस्लिम छात्रा के साथ मिस्टिक वैली चार्टर स्कूल में ये घटना हुई। इस छात्रा को हिजाब पहनने से रोक दिया गया। बच्ची के रिश्तेदार डालियाज ने बताया कि इस बच्ची को जब हिजाब की वजह से क्लासरूम में नहीं बैठने दिया गया तो वो घर लौटी और बुरी तरह से रो रही थी। मुसलमानों के हिसाब से हिजाब इस्लामी पहनावे का हिस्सा है और मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को इस्लाम के मुताबिक पहनावा चुनने का अधिकार है।
पश्चिम में इस्लामोफोबिया कोई नई चीज नहीं है, इसका इतिहास वहां पर बहुत पुराना है। क्रूसेड या धार्मिक युद्ध से इसका संबंध बताया जाता है। हालांकि क्रूसेड युद्ध बहुत पुरानी बात है, लेकिन वर्तमान समय में पूरे पश्चिमी जगत में जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसका संबंध मौजूदा सहस्राब्दी से आरंभ हुआ है। वास्तव में ये पश्चिम का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। पश्चिमी राजनेताओं का यह प्रयास है कि इस्लामोफोबिया का प्रयोग करके अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अर्थात धार्मिक ज्ञान और अपनी पहचान जैसे मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए।
धार्मिक प्रतीकों विशेषकर हिजाब के विरुद्ध संघर्ष पश्चिम की एक सोची समझी चाल है। पश्चिम के कड़े विरोध के बावजूद आज पश्चिम में बहुत सी महिलाएं हिजाब को स्वेच्छा से अपना रही हैं। ये वो विषय है जिसको पश्चिमी सरकारें पचा नहीं पा रही हैं। यही कारण है कि हिजाब का मुकाबला करने के लिए पश्चिम में जुर्माने और सजा के नियम बनाए गए हैं। बहुत लंबे समय से हिजाब का मुद्दा पश्चिमी संचार माध्यमों और राजनेताओं के लिए एक उपकरण बन गया है। वर्तमान हालात से ऐसा लगता है कि इससे मुकाबले के लिए उन्होंने संयम को त्याग दिया है।
इसका एक स्पष्ट उदाहरण अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के मॉल्डन शहर में एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब के कारण स्कूल से निकाल दिया जाना है। हालांकि ये तो मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा है कि सरकारों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वे किसी के लिए पहनावे का निर्धारण करें। मनुष्य स्वेच्छा से अपने लिए कपड़ों का चयन कर सकता है। ऐसा लगता है कि पश्चिम में इस्लाम के बढ़ते कदमों और उसके बढ़ते प्रभावों से वहां के नेता घबराए हुए हैं। अमेरिका जैसे देश में जो स्वयं को मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्वजवाहक मानता है, एक छात्रा को हिजाब की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहां पर शायद उस स्वतंत्रता को महत्व हासिल है जो पश्चिम के हितों की पूर्ति करती हो।
हमने ये सिखाए कि शिक्षा विकास की भूमिका है। विकास चाहे आर्थिक हो या सामाजिक, बिना शिक्षा के हासिल नहीं होता। इसकी एक विशेषता ये भी है कि रोजगार सृजन में भी इसकी भूमिका होती है। ये निर्धनता के उन्मूलन में भी विशेष भूमिका निभाता है। ऐसे में किसी को हिजाब के नाम पर शिक्षा से कैसे वंचित किया जा सकता है? एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब के कारण स्कूल से निकाल दिए जाने पर मॉल्डन शहर के मेयर कैसी क्रिंस्टन ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि बच्ची और उसके परिवार को इस परेशानी से गुजरना पड़ा। गैरी ने कहा कि मैं यूनिफॉर्म के बारे में स्कूल के कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को हिजाब पहनने की आज़ादी है। इस मामले में यूनिफॉर्म के कानून लागू नहीं होते। मॉल्डन शहर के अटॉर्नी जनरल रियान ओमानी ने स्कूल को खत लिखा है कि मॉल्डन शहर इस तरह के कट्टरपंथी स्कूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अमेरिका के अलावा फ्रांस में कई साल से मुसलमान महिलाएं और लड़कियां भारी दबाव का सामना कर रही हैं। उन्हें हिजाब के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। फ्रांस में हालिया वर्षों में इस्लामोफोबिया की लहर भी लगातार बढ़ती रही है। वहां पर मुसलमानों पर हमले तेज हुए हैं। इमैनुअल मैक्रां की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून भी पास किए गए जिससे उनकी जिंदगी में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हिजाब की ओर झुकाव एक प्राकृतिक काम है। महिलाओं के भीतर प्राकृतिक रूप में स्वयं को छिपाने की भावना पाई जाती है।
सामान्यतः जो चीज इतनी महत्वपूर्ण होती है उसकी सुरक्षा भी उसी अनुपात में की जाती है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से महिला के प्रति आकर्षण पाया जाता है। ईश्वर ने परिवार के गठन के लिए ये चीज मनुष्य के भीतर रखी है। इसका यदि सदुपयोग न किया जाए तो फिर पूरा समाज ही खतरे में पड़ जाएगा, जिसका सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को होगा। ईश्वर ने हिजाब को निर्धारित करके महिलाओं की आत्म अभिव्यक्ति की भावना और पुरुष की कामुक इच्छाओं को नियंत्रित किया है।
सूरह नूर की आयत संख्या 30 और 31 में ईश्वर कहता है कि हे रसूल, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी नजरों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा अच्छी बात है। ये लोग जो कुछ करते हैं खुदा उससे यकीनन खूब अवगत है। और ऐ रसूल, ईमानदार औरतों से भी कह दो कि वे भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने बनाव सिंगार को किसी पर जाहिर ना होने दें, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता हो तो उसका गुनाह नहीं, और अपनी ओढ़नियों को अपने ग्रेबानों पर डाले रहें और चलने में अपने पांव जमीन पर इस तरह न रखें कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव सिंगार की खबर हो जाए। और हे ईमानदारों, तुम सबके सब खुदा की बारगाह में तोबा करो ताकि तुम फलाह पाओ।
सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 59 में ईश्वर कह रहा है कि हे पैगंबर, अपनी पत्नियों व बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कह दीजिए कि वे अपने ऊपर अपनी ओढ़नियों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। यह अधिक उचित तरीका है ताकि वे पहचान ली जाएं और सताई न जाएं, और ईश्वर बड़ा क्षमाशील व दयावान है। महिलाओं के पर्दे का मूल कारण उन्हें गलत नज़रों, बुरी बातों और तकलीफ देने वाले व्यवहार से बचाना है। इस आधार पर हिजाब औरत के लिए सुरक्षा है, चाहे उसके कारण कुछ सीमितताएं ही क्यों न हों। इस्लामी समाज में नैतिक पवित्रता की रक्षा पर बहुत बल दिया गया है। इसका एक भाग महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय उचित पहनावे का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाम महिलाओं को घर में नहीं बिठाना चाहता और इसलिए उसने नैतिक पवित्रता की रक्षा के साथ उनकी समाज में उपस्थिति पर रोक नहीं लगाई है।
अगर व्यक्ति भ्रम और आंतरिक इच्छाओं की लालसा से बाहर निकलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो उसे पता चलेगा कि हिजाब वास्तव में एक सही इस्लामिक फैसला है। मनुष्य की बुद्धि उसी ओर झुकाव रखती है जो उसे बुराई से सुरक्षित रख सके। महिला के हिजाब में रहने से समाज भ्रष्टाचार से सुरक्षित रहता है। ये वास्तविकता है कि हिजाब महिला को सम्मान और गरिमा प्रदान करता है। हिजाब के विपरीत नग्नता महिला के सम्मान को कम करती है।
पश्चिमी राजनेता जो हिजाब से डरे हुए हैं, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए हैं। उन्होंने विश्व के अन्य देशों पर भी दबाव बनाया है कि वे भी उन्हीं की भांति हिजाब के विरुद्ध कड़े कानून तैयार करें। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज पश्चिम में हिजाब करने वाली महिलाओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। हिजाब के महत्व के बारे में इस्लाम स्वीकार करने वाली एक फ्रांसीसी महिला मेलानी दियाज कहती हैं कि हिजाब ने मुझको व्यक्तित्व, वीरता, धैर्य, आत्मविश्वास और मजबूत अध्यात्म दिया है। मैंने स्वेच्छा से हिजाब को स्वीकार किया है। हिजाब के साथ मैं अधिक स्वतंत्र हूँ। वे कहती हैं कि मैं इस बात पर ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने जवानी में मुझको हिजाब को समझने की तौफीक दी। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने कार्यक्रम सुना आजकल। इस कार्यक्रम को पेश किया मरियम मेहरदादी और सैयद मीसम ने। कार्यक्रम कैसा था इस बारे में हमें बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। दोस्तों, हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर अपनी सुविधा के अनुसार देख और सुन सकते हैं partstoday.com/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज।
Thank you.